एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानो गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही शायद दिमाग में आता है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। रेने डिकार्त।
हाँ, वो मशहूर वाक्य। लेकिन जैसा कि हम आज टॉम सोरेल की किताब डिकार्त के जरिए देखेंगे, डिकार्त इस एक पंक्ति से कहीं ज्यादा गहरे और प्रभावशाली हैं।
बिल्कुल, उन्हें अक्सर आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है।
और इसकी ठोस वजहें हैं।
और वजह हैं आज शायद पहले से भी ज्यादा मतलब जरूरी हो गई हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ से जानकारी बरस रही है।
हाँ,
सच क्या है, झूठ क्या है, किस पर भरोसा करें? ये सवाल आज जितना बड़ा है, शायद 17वीं सदी में डिकार्त के लिए भी उतना ही बड़ा था, जब पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं।
सही कहा। इसलिए डिकार्त की निश्चित ज्ञान, सर्टन नॉलेज की खोज और उनका सोचने का जो व्यवस्थित तरीका है, मेथड,
हाँ,
वो आज भी हमें कुछ सिखा सकता है। सोरेल की किताब हमें यही दिखाती है कि डिकार्त सिर्फ शक करने वाले दार्शनिक नहीं थे,
नहीं थे,
बल्कि वो ज्ञान की एक पूरी नई इमारत खड़ी करने वाले वास्तुकार थे।
बिल्कुल, एक आर्किटेक्ट जिसकी नींव ऐसी हो जो शक की किसी भी आंधी में टिकी रह सके।
तो चलिए इस महान वास्तुकार के नक्शे को समझते हैं टॉम सोरेल की नजर से।
हाँ, और सोरेल कोई आम इतिहासकार नहीं है, वे वारविक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं राजनीति और दर्शन शास्त्र के।
अच्छा,
और उनकी खासियत है कि वे 17वीं सदी के दर्शन, खासकर डिकार्त जैसे विचारकों को तो गहराई से समझते ही हैं, साथ ही आज के नैतिक और वैज्ञानिक सवालों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है।
और ये दोहरा नजरिया उनकी किताब को खास बनाता है ना?
बिल्कुल,
मतलब वो डिकार्त को सिर्फ म्यूजियम में रखी किसी पुरानी चीज की तरह नहीं देखते।
नहीं, वो उन्हें उनके समय में रखते हैं जब पुरानी सोच ढह रही थी, लेकिन फिर वो एक दार्शनिक की तरह उनके तर्कों की चीरफाड़ भी करते हैं।
ये देखना दिलचस्प है कि वो कैसे मुश्किल विचारों को साफ और समझने लायक बनाते हैं।
हाँ, बिना उनकी गहलाई कम किए।
सही।
बिल्कुल, सोरेल डिकार्त को एक जिंदा विचारक के रूप में पेश करते हैं जिनके सवाल आज भी हमारे सवाल हैं। उनकी किताब अकादमिक तो है, पर भाषा ऐसी है कि कोई भी रुचि रखने वाला पाठक उसे समझ सकता है।
मतलब एक अच्छा सारगर्भित परिचय है डिकार्त के विचारों का।
हाँ, बहुत अच्छा।
तो सोरेल की किताब का मुख्य तर्क क्या है, वो क्या दिखाना चाहते हैं?
जैसा हमने कहा, वो डिकार्त को सिर्फ संदेहवादी मतलब स्केप्टिक के रूप में नहीं देखते।
अच्छा,
उनका कहना है कि डिकार्त का असली लक्ष्य ज्ञान की एक विशाल एकीकृत प्रणाली बनाना था, एक ऐसी इमारत जिसकी नींव इतनी मजबूत हो कि उस पर विज्ञान और बाकी सारा ज्ञान टिक सके।
तो शक करना तो बस वो पुरानी जर्जर इमारत गिराने जैसा था। बिल्कुल,
वो पहला कदम था। किताब हमें डिकार्त की पूरी बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है। वो दौर याद कीजिए, अरस्तु का प्रभाव कम हो रहा था।
हाँ,
गैलीलियो, कॉपरनिकस, नई खोजों ने दुनिया की समझ को हिला दिया था।
सही।
डिकार्त, जो खुद गणितज्ञ थे, ये देखकर निराश थे कि भाई दर्शन में कोई निश्चितता ही नहीं है।
सब अपनी अपनी कह रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगा कि ज्ञान की जमीन ही दलदली है, इस पर कुछ ठोस खड़ा नहीं किया जा सकता।
इसीलिए उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, संदेह की विधि, मेथड ऑफ डाउट।
हाँ, और सोरेल बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये निराशावादी शक नहीं था, एक टूल था, एक हथियार।
कैसा हथियार?
डिकार्त ने तय किया कि वो हर उस चीज को झूठा मानेंगे जिस पर जरा सा भी शक किया जा सके।
हर चीज को?
हर चीज को, ताकि अंत में वो चीज मिल जाए जिस पर शक करना नामुमकिन हो।
वाह।
और इस चरम संदेह की आग से गुजर कर ही उन्हें मिला वो पहला अटल सत्य, कोगिटो।
मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं।
हाँ, यही वो पहली ईंट बनी जिस पर उन्होंने बाकी इमारत खड़ी की। सोरेल फिर दिखाते हैं कि कैसे इस नींव पर डिकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की।
अच्छा, ईश्वर भी आते हैं इसमें?
हाँ, आते हैं, और फिर मन और शरीर के बीच के रिश्ते को परिभाषित किया।
लेकिन ये सब दिमागी कसरत क्यों?
सोरेल जोर देती हैं कि डिकार्त का सपना सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं था, वो एक नया गणित पर आधारित विज्ञान बनाना चाहते थे।
विज्ञान?
हाँ, जो प्रकृति के राज खोल सके और इंसानों को उसका स्वामी और नियंत्रक बना सके।
अच्छा, मतलब ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग।
बिल्कुल, उनका दर्शन एक पेड़ की तरह था, जड़ें दर्शन शास्त्र, तना भौतिकी और फल व्यवहारिक विज्ञान जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग।
ये तो काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है।
हाँ, चलिए सोरेल की किताब के जरिए इस योजना की बारीकियों में उतरते हैं।
हाँ, तो शुरुआत होती है 17वीं सदी के उस माहौल से कल्पना कीजिए, हजारों साल से चली आ रही अरस्तु की सोच, चर्च की शिक्षाएं,
वो नई वैज्ञानिक खोजों के सामने कमजोर पड़ रही हैं।
ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा बताया गया था,
सब कुछ बदल रहा था। हाँ, देकार जैसे युवा जो गणित की निश्चितता के कायल थे, दर्शन की इस हालत से बेहद परेशान थे। उन्हें दर्शन में भी वैसी ही स्पष्टता और निश्चितता चाहिए थी,
जैसे 2+2/4 होता है, वैसे ही दर्शन में भी कुछ पक्का हो।
बिल्कुल। सोरेल हमें बताते हैं कि देकार्त का मिशन किसी छोटे मोटे सुधार का नहीं था, बल्कि ज्ञान की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बनाने का था।
पूरी व्यवस्था को?
हाँ, यहाँ उनके उन प्रसिद्ध 3 सपनों का भी जिक्र आता है, जिन्हें उन्होंने अपनी इस बड़ी खोज के लिए एक तरह का दैवीय इशारा माना।
अच्छा,
ये दिखाता है कि उनके लिए ये काम कितना अहम था। सोरेल के मुताबिक देकार्त को समझना है तो उनकी इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा को समझना होगा, ज्ञान के लिए एक ऐसी नींव खोजना जो कभी न हिले।
और इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली बनाई, वो 4 नियम जिनका जिक्र अक्सर होता है।
हाँ, वो 4 नियम। पहला, तब तक किसी चीज को सच न मानो जब तक वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट न हो,
कोई शक की गुंजाइश ही ना हो।
बिल्कुल। दूसरा, हर मुश्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो।
ठीक है।
तीसरा, विचारों को सरल से शुरू करके धीरे धीरे जटिल की तरफ ले जाओ,
स्टेप बाय स्टेप।
हाँ। और चौथा, हमेशा पूरी जांच करो कि कुछ छूट तो नहीं गया।
सुनने में तो ये नियम सीधे लगते हैं, पर इनका इस्तेमाल उन्होंने बड़े ड्रामेटिक ढंग से किया।
हाँ, खासकर उनके व्यवस्थित संदेह में। सुरेल हमें संदेह की उन 3 लहरों के अनुभव से गुजारते हैं जैसा देकार्त ने अपनी किताब मेडिटेशंस में किया।
3 लहरें कैसी?
पहली लहर, इंद्रियों पर संदेह। क्या हम अपनी आंखों कानों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं?
कभी कभी तो धोखा खा जाते हैं।
बिल्कुल। पानी में सीधी छड़ी टेढ़ी दिखती है, दूर की चौकोर मीनार गोल नजर आ सकती है। तो अगर हमारी इंद्रियां कभी कभी धोखा देती हैं, तो क्या पता वो हमेशा ही धोखा देती हो। तर्क,
स्वप्न तर्क, मतलब
सोचिए, कई बार सपने इतने असली लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सपना देख रहे हैं।
हाँ, होता है ऐसा।
तो क्या गारंटी है कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और ये सब सपना नहीं है?
अरे,
अगर मैं जागने और सपने में पक्का फर्क नहीं कर सकती, तो मैं अपने आसपास की दुनिया के वजूद के बारे में निश्चित कैसे हो सकती हूँ?
ये तो पूरी भारी दुनिया पर ही सवाल उठा देता है।
बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी और सबसे डरावनी लहर, दुष्ट दानव परिकल्पना, ईविल डीमन हाइपोथेसिस।
दुष्ट दानव, ये क्या है?
देकार्त कहते हैं, चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है जिसका एकमात्र काम मुझे धोखा देना है।
ओहो।
वो मेरे दिमाग में ऐसे विचार डाल रहा है कि मुझे लगे 2+2=4 होते हैं, जबकि शायद असल में ऐसा ना हो। वो मुझे हर चीज के बारे में भरमा रहा है,
गणित के बारे में भी।
हाँ, अगर ऐसा दानव हो सकता है तो मैं किस चीज पर यकीन कर सकती हूँ? किसी चीज पर नहीं।
ये तो बहुत एक्सट्रीम सोच है।
है, पर सोरेल यहाँ साफ करती हैं कि देकार्त ये सब मानकर पागल नहीं हो रहे थे, ये एक दिमागी प्रयोग था।
अच्छा, एक थॉट एक्सपेरिमेंट।
हाँ, एक सोचा समझा विध्वंस, पुरानी कमजोर नींव को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का तरीका, ताकि बिल्कुल साफ जमीन पर नई शुरुआत की जा सके।
और इसी विध्वंस के चरम बिंदु पर, जब लगता है कि कुछ भी निश्चित नहीं बचा,
तभी रोशनी की एक किरण फूटती है। ये देकार्त के प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट है।
कैसे?
जब मैं हर चीज पर संदेह कर रहा हूँ, तब भी एक चीज है जिस पर मैं संदेह नहीं कर सकता।
वो क्या?
वो ये कि मैं संदेह कर रहा हूँ।
अच्छा।
संदेह करने के लिए, धोखा खाने के लिए, सोचने के लिए मेरा अस्तित्व में होना जरूरी है। अगर कोई दुष्ट दानव मुझे धोखा दे रहा है, तो भी मैं तो हूँ जिसे धोखा दिया जा रहा है।
वाह, ये तो कमाल का मोड़ है।
और यहीं से निकलता है दर्शन के इतिहास का शायद सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कॉजिटो अर्गो सम।
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
हाँ, सुरेल इसकी क्रांति को उजागर करती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये पहला चट्टान जैसा मजबूत सत्य था जो संदेह की हर कसौटी पर खरा उतरा।
वो निश्चित बिंदु मिल गया।
मिल गया। इसने साबित किया कि मेरा अस्तित्व एक सोचने वाली चीज रेस कोजिटांस के रूप में निश्चित है। ये बाहरी दुनिया से पहले मेरे अपने मन की, मेरी चेतना की निश्चितता थी। यही वो आर्किमिडियन बिंदु था, वो ठोस धरातल जहां से डेकार्त ने ज्ञान की पूरी इमारत को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया।
ये पश्चिम के विचार में एक बड़ा मोड़ था, सत्य की नींव बाहर नहीं अपने अंदर मिली।
बिल्कुल
ठीक है, तो डेकार्त ने अपने होने की निश्चितता तो पा ली, लेकिन वो अब अपने मन के इस अकेले द्वीप से बाहर कैसे निकले? गणित कैसे सच है, बाहरी दुनिया कैसे सच है?
हाँ, ये अगला बड़ा सवाल था, और यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, ईश्वर की भूमिका।
ईश्वर दर्शन में कैसे?
हाँ, आप सोचेंगे ईश्वर कहाँ से आ गए, लेकिन डेकार्त के लिए जैसा सुरेल बताती हैं, ईश्वर धार्मिक विश्वास से ज्यादा ज्ञान की गारंटी थे।
ज्ञान की गारंटी,
ये कैसे?
डेकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए तर्क दिए जो आज भी बहस का विषय है। एक तर्क है जिसे ट्रेडमार्क आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
ट्रेडमार्क?
हाँ, मतलब मेरे जैसे अपूर्ण मन में एक पूर्ण सत्ता का विचार कहां से आया? यह विचार इतना बड़ा है कि मैं खुद इसे बना नहीं सकती। जरूर इसे किसी वास्तविक पूर्ण सत्ता यानी ईश्वर ने ही मेरे मन में डाला होगा, जैसे कोई कारीगर अपनी बनाई चीज पर अपना निशान छोड़ देता है।
अच्छा, ये तो दिलचस्प तर्क है। और दूसरा
तर्क ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। एक पूर्ण सत्ता की परिभाषा में ही उसका अस्तित्व शामिल होना चाहिए, वरना वो पूर्ण कैसे होगी?
ओके, ये थोड़े जटिल तर्क है।
हाँ हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ईश्वर मौजूद है और वो पूर्ण है,
हाँ,
तो वो धोखेबाज नहीं हो सकता। धोखा देना तो एक कमी है, अपूर्णता है। ठीक है,
इसका मतलब वो दुष्ट दानव वाली बात गलत थी। ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, और अगर हम किसी विचार को पूरी तरह स्पष्ट और सुभिन, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट रूप से समझते हैं, जैसे गणित के सिद्धांत, तो वो जरूर सच होंगे,
क्योंकि ईश्वर हमें जानबूझकर धोखा नहीं देगा।
बिल्कुल, तो अब ईश्वर की गारंटी के साथ हम अपनी तर्क बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं, दुनिया पर फिर से यकीन किया जा सकता है।
लेकिन सावधानी से, तर्क की कसौटी पर कसकर।
हाँ, न कि सिर्फ आंख मूंद कर इंद्रियों पर।
समझ गया, तो ज्ञान की नींव और गारंटी मिल गई। अब आगे,
अब डेकार्त दुनिया की असलियत का विश्लेषण करते हैं, और यहीं पर उनका वो विचार आता है जिसने शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ी है, मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी डुअलिज्म।
हाँ, ये तो सुना है, क्या है ये?
वे कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की मूल चीजें हैं, एक है मन, रेस कुजिटेंस, जिसका स्वभाव सोचना है, जो जगह नहीं घेरता, जिसे बांटा नहीं जा सकता।
ठीक है, सोचने वाली चीज।
और दूसरा है पदार्थ या शरीर, रेस एक्सटेंसा, जिसका स्वभाव फैलना है, लंबाई चौड़ाई गहराई, जो सोचता नहीं और जिसे बांटा जा सकता है।
फैलने वाली चीज, सोचने वाली चीज और फैलने वाली चीज।
हाँ, और क्योंकि वो इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग सोच सकते थे, उन्होंने नतीजा निकाला कि ये वाकई में दो पूरी तरह अलग चीजें हैं।
हमारा मन या आत्मा और हमारा शरीर दो भिन्न दुनियाओं से हैं,
उनके हिसाब से।
हाँ, सोरेल बताती हैं कि इसके कितने बड़े नतीजे हुए। एक तरफ इसने भौतिक दुनिया को एक मशीन की तरह देखने का रास्ता खोला,
जिसे विज्ञान पढ़ सकता है।
बिल्कुल, शरीर भी एक मशीन है, इससे आधुनिक विज्ञान को बहुत बल मिला। लेकिन दूसरी तरफ इंसान एक अजीब पहेली बन गया,
मशीन में भूत,
घोस्ट इन द मशीन।
हाँ, वही, एक भौतिक मशीन के अंदर रहने वाला एक अभौतिक भूत।
और इसने तुरंत एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी होगी।
हाँ, जिसे इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं।
इंटरैक्शन प्रॉब्लम,
अर्थ तो वे आपस में बातचीत कैसे करते हैं?
हाँ, मेरा मन में लिया फैसला मेरे हाथ को कैसे हिलाता है?
बिल्कुल, या मुझे चोट लगती है, शारीरिक घटना, तो मुझे दर्द महसूस होता है, मानसिक घटना, ये कनेक्शन कैसे बनता है?
ये तो सचमुच बड़ी पहेली है।
कहते हैं राजकुमारी एलिजाबेथ ने चिट्ठियों में डेकार्त को यही सवाल पूछकर परेशान कर दिया था।
अच्छा, तो डेकार्त ने क्या जवाब दिया?
उन्होंने पीनियल ग्रंथि का जिक्र किया कि शायद दिमाग के इस छोटे से हिस्से में संपर्क होता है, पर ये जवाब किसी को ज्यादा जमा नहीं, ये गुत्थी आज भी उलझी हुई है।
तो डेकार्त ने और क्या कहा?
सुरेल ये भी बताती हैं कि डेकार्त ने सिर्फ इन बड़े सवालों पर ही नहीं, बल्कि भावनाओं, पैशंस ऑफ द सोल पर भी लिखा।
भावनाओं पर?
हाँ, उन्होंने भावनाओं को शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं का नतीजा माना, जिन्हें आत्मा महसूस करती है। उनका मानना था कि समझदार व्यक्ति का काम है अपनी इच्छा शक्ति से इन भावनाओं पर काबू पाना।
अच्छा, मतलब दिमाग से दिल पर काबू रखना,
कुछ वैसा ही। और उनकी अंतिम नैतिकता का भी जिक्र है, जब तक ज्ञान की पक्की नींव न मिल जाए, तब तक समाज में जीने के लिए कुछ काम चलाओ नियम।
जैसे कि?
जैसे अपने देश के कानून मानना, अपने फैसलों पर टिके रहना वगैरह।
ठीक है,
अंत में सोरेल डेकार्त की विरासत को समेटते हैं, आधुनिक दर्शन का पिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्शन का फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर व्यक्ति के अपने अनुभव, अपनी चेतना पर ला दिया।
मैं क्या जान सकता हूँ, ये सवाल केंद्र में आ गया।
हाँ, मन, शरीर, तर्क बनाम अनुभव, निश्चितता की तलाश, ये सब देकार्त की देन है जिन पर आज तक बहस जारी है।
तो अगर हम सुरेल की किताब से देकार्त के दर्शन के सबसे जरूरी सबक निकालें तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहली,
पन अस्पष्टता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें ज्ञान के लिए ऐसी बुनियाद चाहिए थी जिस पर रत्ती भर भी शक न किया जा सके।
ये जुनून उनके पूरे काम में दिखता है। दूसरा
सबक, तर्क की सर्वोच्चता, रैशनलिज्म। उनके लिए सच्चा ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि दिमाग की तर्क शक्ति से आता है। जैसे गणित में स्पष्ट और सुभिन्न विचार ही सत्य का पैमाना है।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा जो मुझे बहुत क्रांतिकारी लगता है, मैं का केंद्रीय महत्व, द सब्जेक्टिव टर्न। देकार्त से पहले दर्शन अक्सर दुनिया या ईश्वर से शुरू होता था। देकार्त ने शुरुआत खुद से की, मैं सोचता हूँ।
मेरी अपनी चेतना ज्ञान का शुरुआती बिंदु बन गई।
हाँ, ये दर्शन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था।
चौथा,
मन शरीर का द्वैतवाद और उसके नतीजे। ये विचार कि मन और पदार्थ दो अलग अलग सत्ताएं हैं, इसने विज्ञान को तो आगे बढ़ाया
पर इंसान को समझने में एक गहरी फांक पैदा कर दी। हम शरीर हैं या मन या दोनों, और जुड़ते कैसे हैं?
हाँ, ये सवाल आज भी हमें परेशान करता है।
और पांचवां सूत्र,
एक एकीकृत गणितीय विज्ञान का सपना। सोरेल बार बार याद दिलाती हैं कि देकार्त सिर्फ हवा में किले नहीं बना रहे थे, उनका मकसद बड़ा व्यवहारिक था।
प्रकृति को समझना और
उसे नियंत्रित करना।
हाँ, ताकि इंसान उसका मालिक बन सके, बीमारियों को दूर कर सके, जीवन को बेहतर बना सके। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने, कुछ बदलने के लिए था।
देकार्त के कुछ वाक्य तो अमर हो गए हैं, सुरेल हमें उनके पीछे के गहरे अर्थ को समझाती हैं।
हाँ, जैसे संदेह की विधि का सार, मैंने निश्चय किया कि हर उस चीज को पूरी तरह झूठा मान लूंगा जिसमें जरा भी संदेह की गुंजाइश हो, ताकि देख सकूं कि अंत में कुछ ऐसा बचता है या नहीं जो पूरी तरह संदेह से परे हो।
सुनने में कितना कट्टर लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि निश्चितता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
बिल्कुल, पहले जमीन पूरी साफ करो फिर बनाओ, और फिर जाहिर है कॉगिटो एर्गो सम।
मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, बल्कि ये कि सोचने का काम ही मेरे होने का सबसे पक्का सबूत है
जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये वो लंगर था जिसने उन्हें संदेह के तूफान में डूबने से बचाया।
हाँ, इसने व्यक्ति की चेतना को ज्ञान का केंद्र बना दिया।
उनके द्वैतवाद का निचोड़ भी देखिए।
मन एक ऐसा पदार्थ है जिसका पूरा सार सोचना है, और जिसे अस्तित्व में रहने के लिए किसी स्थान या भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं, यह शरीर से पूरी तरह अलग है।
इस एक वाक्य ने मन और पदार्थ के बीच एक दीवार खड़ी कर दी।
हाँ, जिसके असर से विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन आज तक जूझ रहे हैं।
और आखिर में उनके लक्ष्य का सार,
मेरे नए दर्शन का उद्देश्य हमें प्रकृति का स्वामी और नियंत्रक बनाना है।
ये उनकी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। ज्ञान उनके लिए सिर्फ दिमागी खेल नहीं था।
नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने का एक साधन था, इंसान की शक्ति बढ़ाने का जरिया।
सुनने में ये सब काफी सैद्धांतिक लग सकता है ना?
हाँ, लगता है जैसे ये सब सिर्फ दार्शनिकों के काम की बातें।
पर सुरेल इशारा करते हैं, और मुझे भी लगता है कि देकार्त के सोचने के तरीके से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग कैसे?
देकार्त का संदेह का तरीका आज के फेक न्यूज के जमाने के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। कोई भी खबर, कोई भी दावा सुनने पर रुक कर पूछें, क्या इस पर शक करने की कोई वजह है? क्या ये वाकई स्पष्ट और सुभिन्न है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है? सबूत कहाँ है?
हाँ, ये तो बहुत काम की बात है। और
दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग।
फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब?
किसी भी समस्या को बिल्कुल उसकी जड़ तक ले जाना, सारी ऊपरी परतें हटाकर बुनियादी सच्चाइयों से सोचना शुरू करना।
अच्छा, जैसे आजकल बिजनेस और इनोवेशन में ये बहुत चलता है।
हाँ, ये ठीक वही है जो देकार्त ने ज्ञान के साथ किया। पुरानी धारणाएं छोड़ो और एकदम शुरू से ठोस बुनियाद से सोचो।
तीसरा, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस।
कॉगिटो हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं का जोड़ नहीं है, हम वो मैं हैं जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है, अनुभव कर रहा है।
ये समझ हमें अपनी भावनाओं को थोड़ा दूरी से देखने और उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद कर सकती है।
हाँ, जैसा डेकार्त ने कहा था कि आत्मा इच्छा शक्ति से भावनाओं पर काबू पा सकती है।
चौथा, किसी भी बड़े काम को करने का तरीका।
डेकार्त के वो चार नियम, स्पष्टता, विभाजन, क्रम, पूर्णता, ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गाइड की तरह हैं।
अच्छा, कैसे?
कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले लक्ष्य साफ करो, स्पष्टता, उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटो, विभाजन, उन्हें एक लॉजिकल क्रम में करो, क्रम, और आखिर में देख लो कि सब कुछ हो गया है, पूर्णता।
अरे वाह, ये तरीका तो वाकई काम करता है।
और पांचवा जो मुझे खास लगता है, बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
वो कैसे? डेकार्त तो बड़े मन थे।
हाँ, पर उनकी पूरी यात्रा ये दिखाती है कि सच जानने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि हम कितना कम जानते हैं। जब उन्होंने सब कुछ पर शक किया तो वो एक तरह से अपनी अज्ञानता को ही स्वीकार कर रहे थे।
ये हमें नए विचारों के लिए खुला रखता है और ये मानने को तैयार करता है कि शायद हम गलत भी हो सकते हैं।
बिल्कुल।
तो टॉम सोरेल की किताब के जरिए डेकार्त की इस दुनिया में घूमने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि डेकार्त को सिर्फ शक करने वाला कहना उनके साथ नाइंसाफी है।
हाँ,
वो एक निर्माता थे, एक बिल्डर जो ज्ञान की एक ऐसी गगनचुंबी इमारत खड़ी करना चाहते थे जो सदियों तक टिकी रहे।
उनका संदेह विध्वंस जरूर था, पर उसका मकसद नव निर्माण था।
बिल्कुल।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैसे उनका वो चरम, लगभग भयानक लगने वाला संदेह असल में निश्चितता तक पहुंचने का एक बहुत ही अनुशासित और सोचा समझा रास्ता था।
ये कोई निराशा नहीं बल्कि एक मेथड था।
हाँ, एक मेथड। और वो मेथड, सोचने का वो व्यवस्थित तरीका, आज भी कितना काम का है, चाहे हम वैज्ञानिक हों या विद्यार्थी या बस अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे हों।
डेकार्त ने हमें सिखाया कि सच की राह में सबसे बड़ा साथी शायद हमारा अपना सवाल पूछने का साहस ही है।
उन्होंने हमें सचमुच सोचना सिखाया
और शायद आज हमें इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।